पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, उर्दू भाषा और साहित्य का प्रारंभिक विकास। उर्दू साहित्य का इतिहास उर्दू भाषा के इतिहास से आरंभ होता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की तरह उर्दू को भी सामाजिक आवश्यकताओं ने जन्म दिया, जिसमें धीरे धीरे सांस्कृतिक विचारों और साहित्यिक कृतियों का प्रवेश हुआ। उर्दू को इतिहास ने जन्म दिया, बढ़ने का वातावरण पैदा किया और एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया कि 18वीं-19वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने हिंदुस्तानी के रूप में इसे देश की जनभाषा की संज्ञा प्रदान की। इस कहानी को समझने और उसकी श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए हजारों वर्ष पीछे जाना आवश्यक है। यद्यपि भाषाओं में जो परिवर्तन होता है वह साहित्य के मुकाबले में साधारणतः व्यवहारिक ही होता है, परंतु यह परिवर्तन भी सामाजिक चेतना तथा अन्य भाषाओं के तदात्म्य से उत्पन्न होता है। साहित्य जिन प्रभावों को सहज ही स्वीकार कर लेता है, भाषा उसे देर में ग्रहण करती है। उर्दू भाषा और साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए ये सब बातें सामने आएंगी और इतिहास की सहायता से समझी जाएंगी, और इसी से यह तथ्य भी स्पष्ट होगा कि ना तो उर्दू भाषा भारत के बाहर पैदा हो सकती थी और न उसका साहित्य। भाषा विज्ञान के अनेक विद्वानों ने भारत को भाषाओं का अजायब घर कहा है। ग्रियर्सन के विचार में यहाँ 179 भाषाएं और 544 बोलियाँ पाई जाती हैं। इस संख्या में वह अनेक भाषाएं भी सम्मिलित हैं जिनके बोलने वाले या तो किसी छोटे से क्षेत्र में सीमित हैं या इतने कम हैं कि देश के भाषा इतिहास में कोई महत्व नहीं रखते। इसी प्रकार अधिकतर बोलियाँ ऐसी हैं जो अन्य भाषाओं के अधीन हैं। इसीलिए जब किसी ऐसी भाषा का इतिहास लिखने का आयोजन किया जाए जिसने देश की सांस्कृतिक उन्नति में प्रभावशाली भाग लिया है, उस समय यहाँ की उन सभी बड़ी बड़ी भाषाओं और बोलियों को दृष्टि में रखना होगा जिनसे उसका संपर्क हुआ। उर्दू भाषा और साहित्य का इतिहास लिखते हुए उत्तर भारत की भाषाओं की उन्नति और विकास को सामने रखना इसलिए भी आवश्यक है कि जिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों ने उर्दू भाषा को उद्भव और उसके साहित्य के विकास को प्रभावित किया, वही साधारणतः दूसरी भारतीय भाषाओं के बनने और विकसित होने में सहायक रहीं। उर्दू भाषा का इतिहास एक प्रकार से भारत के 1000 वर्षों का इतिहास है। उसी समय में भारत की अन्य पृष्ठ संख्या 2, आधुनिक भाषाओं का विकास भी हुआ। इस 1000 वर्ष में भारतीय समाज उन्नति, पतन और परिवर्तन के जिन युगों से गुजरा, उसका प्रभाव यहाँ की प्रत्येक भाषा और साहित्य पर पड़ा, किसी पर कम और किसी पर अधिक। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने किसी बोली या भाषा को आगे बढ़ा दिया और किसी की बाढ़ रोक दी। अतएव 10वीं शताब्दी के बाद में कुछ ऐतिहासिक सामग्रियां ऐसी एकत्र हो गईं कि भारतीय आर्य भाषाओं के समूह में एक नई भाषा ने जन्म लिया, जिसको आज उर्दू कहा जाता है। अब यह देखना चाहिए कि इसका उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, उसे एक नई भाषा किस दृष्टिकोण से कह सकते हैं और भारतवर्ष की संस्कृति में उसका एक क्या स्थान है। विस्तार में ना जाकर उसकी उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण उसकी साहित्यिक परंपराओं के समझने में बहुत सहायक होगा। भारतवर्ष का इतिहास देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि यहाँ की भाषाओं में उसी समय कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है जब देश के धार्मिक या राजनीतिक जीवन में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है। आर्य भाषाओं के प्रवेश से पहले यहाँ द्रविड़ भाषा और संस्कृति की बड़ी उन्नति हुई, जिसमें आस्ट्रिक और दूसरी जातियों की बोलियों और सभ्यताओं की लहरें भी देखी जा सकती हैं। कदाचित यह कहना उचित होगा कि द्रविड़ संस्कृति ने पहले की संस्कृतियों को बहुत कुछ अपने अंदर समेट लिया था। जो कुछ उसके बाहर था वह बहुत महत्व नहीं रखता था। आर्यों के आने के बाद उत्तर भारत और मध्य देश में आर्य बोलियों ने पहले की भाषाओं की जगह ले ली। यह एक क्रांतिकारी घटना थी कि उत्तर भारत से वह भाषा लुप्त हो गई जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की जन्मदात्री थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभावों के कारण आर्य जाति के लोग द्रविड़ों में पूरी तरह मिल न सके। द्रविड़ों ने बाद में आर्य संस्कृति से बहुत कुछ लिया, किंतु आरंभ में पूर्णतः अलगाव रहा। इसका यह अर्थ नहीं कि द्रविड़ भाषा और संस्कृति ने आर्य भाषा और संस्कृति को प्रभावित नहीं किया, प्रश्न केवल मात्रा का है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी तथा अन्य भाषा शास्त्रियों ने अनेक ऐसे शब्दों की ओर संकेत किया है जो ऑस्ट्रिक और दूसरी भाषाओं से लिए गए और आज भी प्रचलित हैं। यहाँ इस रोचक विषय पर इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता। द्रविड़ भाषा की उन्नति के बाद देश के भाषिक इतिहास में यह दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था जब आर्य यहाँ आए। उनके आने के पश्चात वैदिक संस्कृति ने महत्ता प्राप्त कर ली। इसमें संदेह नहीं कि भारत में आर्य जाति ने हिंदुस्तानी समाज को वर्णों में इस प्रकार विभाजित कर दिया कि उच्च जाति की बोली और निम्न लोगों की बोलियों में बड़ा अंतर पैदा हो गया। संस्कृत के प्राचीन नाटकों में ब्राह्मण, राजा और उनके मंत्री संस्कृत बोलते हैं, तो निम्न वर्ग के लोग, जिसमें स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, प्राकृत बोलते दिखाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 3। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संस्कृत के साथ साथ प्राकृतें भी मौजूद थी। ब्राह्मणवादी सभ्यता धार्मिक बंधनों में फंसकर जितना अपने को ऊपर उठाती चली गई और अपनी भाषा को पवित्र बताने के विचार से व्याकरण और शुद्ध उच्चारण के बंधनों में कसती चली गई, उतना ही निम्न वर्ग के लोग उससे दूर होते चले गए। कहने को तो संस्कृत आज भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान रखती है, किंतु भारत के पूर्ण इतिहास में या बुद्धिजीवियों, उच्च वर्ग के सुशिक्षित व्यक्तियों की बोलचाल और साधारण व्यवहार की नहीं, वरन केवल धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जीवित रही। इसीलिए जब भारतीय समाज में धार्मिक परिवर्तन हुए तो संस्कृत को पीछे हटना पड़ा, अर्थात इस पर सबसे बड़ी चोट उस समय लगी जब बौद्ध और जैन धर्मों ने जन्म लिया और दूसरी बार हिंदुस्तानी भाषा के इतिहास में वह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसको भारतीय आर्य भाषाओं का मध्यकालीन युग कहा जाता है और जिसमें संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत को बढ़ने और फैलने का अवसर मिला। बौद्ध और जैन धर्मों ने आर्य धर्म के ढांचे के अंदर ही एक ऐसे नए मोर्चे को विकसित किया जो ब्राह्मणों के अधिकारों के विरुद्ध स्थापित किया गया था, क्योंकि उन्होंने धर्म को केवल विशेष संस्कारों का संग्रह बना रखा था। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध मत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का द्योतक था, परंतु भारतीय संस्कृति के सामूहिक विकास में उनको आर्य संस्कृति के विरोध में कोई नई धारा नहीं कहा जा सकता। इसमें भी संदेह नहीं कि निम्न वर्गीय जातियों को बौद्ध धर्म से बड़ी प्रेरणा मिली, परंतु वर्गों का वह आधार जो ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा पर अवलंबित था एकदम से नहीं टूटा। इस संबंध में हमें और बातों को छोड़कर भाषा की दृष्टि से उस महान आंदोलन का अनुमान लगाना है जो इस धार्मिक परिवर्तन के बहाव में पैदा हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपने धर्म का प्रचार आरंभ किया और बहुत से लोग उनमें जीवन के नए उद्देश्य देखकर सम्मिलित होने लगे, तो उनके कई बड़े बड़े शिष्यों ने, जो वैदिक धर्म, संस्कृति और भाषा से भली भांति परिचित थे, उनसे कहा कि वह इस समय तक अपनी शिक्षा को स्थानीय बोलियों में प्रस्तुत करते रहें। अब समय आ गया है कि उन्हें देश को पवित्र और सभ्य भाषा अर्थात संस्कृत में संग्रहित कर लिया जाए, परंतु महात्मा बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस संबंध में डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के ये शब्द याद रखने योग्य हैं, इन्वर्टेड कामा, परंतु बुद्ध ने इसे स्वीकृत कर दिया और साधारण जनों की सभी बोलियों को ही अपना माध्यम रखा। उनका यही अनुरोध रहा कि समस्त जन उनके उपदेश को अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण करें, ब्रैकेट में सकाय निरुत्तिया। इससे उन बोलियों के साहित्य प्रयोग में बहुत मदद मिली। वास्तव में यह आत्मिक स्वातंत्र्य की दृष्टि पृष्ठ संख्या 4 से एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उस समय पूरा पूरा महत्व लोग ना समझ सके और न लाभ ही उठा सके। इस प्रकार प्राकृतों को फलने फूलने का अवसर मिला। भारत में भाषिक दृष्टि से यह दूसरा महान परिवर्तन था जो 600 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हुआ। इस युग में पाली, मागधी, अर्ध मागधी, शौरसेनी और अन्य भाषाएं भारत के विभिन्न भागों में अपनी जड़ें फैलाने लगी। अभी यह दूसरा युग समाप्त नहीं हुआ था कि आर्य भाषाओं में फिर कुछ परिवर्तन होने लगे और प्राकृतों में संस्कृत के तत्सम शब्द कम होने लगे और उनकी जगह तद्भव शब्दावली विकसित होती प्रतीत हुई। भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ इसको अपभ्रंशों का युग कहते हैं। अपभ्रंशों को परिवर्तन काल की बिगड़ी हुई भाषा भी कह सकते हैं। इनका उद्भव 8वीं शताब्दी ईस्वी ही में हो गया था और कई 100 वर्षों तक इनका बोलबाला रहा। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी भारत की धार्मिक सभ्यता में उथल पुथल हुआ और केंद्रीय शक्ति टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बटी, तब भाषा पर भी उसका प्रभाव पड़ा। उस समय तक बौद्ध मत का जोर भी घट चुका था और ब्राह्मणवाद फिर अपने दार्शनिक तर्कों को संभाल कर आगे बढ़ रहा था। भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषाओं के द्वितीय और तृतीय या मध्यकालीन और आधुनिक युग को मिलाने वाली कड़ी कहा है। अपभ्रंशों का सिलसिला वैसे तो 14वीं शताब्दी तक मिलता है, परंतु 1000 ईस्वी के लगभग भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ और उर्दू भाषा और साहित्य का इतिहास लिखते समय हमें इसी युग को विशेषकर दृष्टि में रखना है। अनेक भाषा शास्त्रियों का विचार है कि भारत की वर्तमान आर्य भाषाओं का डौल अपभ्रंशों के अंदर ही पड़ा और इस दफा भी यह परिवर्तन एक महान ऐतिहासिक और सामाजिक क्रम में हुआ। दो बड़े बड़े भाषा संबंधी परिवर्तनों की भांति 1000 ईस्वी के निकट यह नया आंदोलन उस समय हुआ जब हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ी संख्या में आए। वैसे तो अरब और मुसलमान यहाँ बहुत पहले से आ जा रहे थे, परंतु 10वीं शताब्दी के अंत में उनको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त हुआ। इस बात को न भूलना चाहिए कि यदि मुसलमान यहाँ न आते तो भी भाषाओं में परिवर्तन अवश्य होता, परंतु उसका रूप कुछ और होता। मुसलमानों के आगमन में भाषिक परिवर्तन का वेग बढ़ गया। वह जो बोलियाँ बोलते हुए भारत में आए थे, उन बोलियों ने भी स्वाभाविक रूप में यहाँ की बोलियों पर प्रभाव डाला। इस परिस्थिति को भली भांत समझने के लिए भारत के सामाजिक जीवन को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 5। जब दो राष्ट्र अथवा दो जातियों के लोग एक दूसरे से इस प्रकार घुल मिल जाते हैं जैसे बाहर से आने वाले मुसलमान और हिंदुस्तान के वासी, तो उनका प्रभाव एक दूसरे पर इतने असंख्य रूपों में पड़ता है जिनको अलग अलग व्यक्त करना या उन्हें पूर्णतः समझना बहुत कठिन हो जाता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भावनाओं को अलग अलग और मिला जुला कर देखना बहुत सी उलझी हुई समस्याओं पर प्रकाश डालेगा। भाषा को मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार ने ही जन्म दिया है और उसी व्यवहार के बदल जाने से उसमें परिवर्तन होता है। मुसलमानों के आने से भारत का वह सामाजिक जीवन एक नई राह पर चल पड़ा जिसमें बहुत दिनों से कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी थी। भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विश्लेषण में बड़ी सहायता करती है और साथ ही साथ अपने विकास का मर्म भी खुलती जाती है। वह ना तो निर्जन स्थान में पैदा होती है और ना उन्नति कर सकती है। मुसलमानों के आने के पूर्व जो भाषाएं भारत में प्रचलित थीं, उनमें की कई भाषाओं में भी मुसलमानों के आने के कारण वैसा ही परिवर्तन हुआ जैसा संगीत, चित्रकला और भक्ति आदि में हुआ। यदि ऐसा ना होता तो भाषा विज्ञान और भौतिक घटनाओं के प्रभाव के विचार बिल्कुल गलत हो जाते। 5वीं से 7वीं शताब्दी तक अरब व्यापारी दक्षिण भारत के मलाबार के तट पर आते रहे, परंतु उनकी अरबी भाषा का प्रभाव वहाँ की भाषाओं पर अधिक नहीं पड़ा। इसी प्रकार अरब के मुसलमान 8वीं शताब्दी के आरंभ में सिंध में आए, किंतु उन्होंने भी भारतवर्ष के भाषा संबंधी जीवन पर कोई गहरा चिन्ह नहीं छोड़ा। परंतु इसके पश्चात जो मुसलमान ईरान की ओर से 10वीं शताब्दी के अंत में यहाँ आने लगे, उनका आना ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है। जो मुसलमान 200 वर्षों से ईरान में रहते थे, उनमें कई सांस्कृतिक धाराएं मिलती हैं। उनका धर्म तो अवश्य सामी था, परंतु उनकी सभ्यता में जोरोआस्ट्रियन, बौद्ध और मसीही धर्मों के तत्व भी देख पड़ते हैं। उनमें से अधिकतर की बोलचाल की भाषा फारसी थी, जो स्वयं एक बड़ी प्रभावशाली आर्य भाषा है। जब हम भारत की और विशेषकर पंजाब और मध्य भारत की भाषाओं के विकास का अध्ययन करें, तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। नई हिंदुस्तानी भाषाएं जिस युग में विकसित हुई, सभ्यताओं के सामंजस्य का भी वही समय था। जब कोई व्यक्ति भाषाओं का सामाजिक रूप से अध्ययन करना चाहे, तो उसे हिंदुस्तानी समाज के परिवर्तनों और ऐतिहासिक घटनाओं को देखना ही पड़ेगा। हर्षवर्धन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब किसी प्रकार की राजनीतिक एकता का विचार भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसी समय अर्थात 1000 ईस्वी के लगभग मुसलमानों ने पंजाब के बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया।